निताई गौर हरि प्रेम नंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जये मम धीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट किम्। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविष्णुं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सार्वजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साधयेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदा सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी Radhe Vrindavaneshwari Vishvano Sute Devi Pranamami Hari Vancha Kalpatarubhyasya Kripa Sindhu Vyayevacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare जगन्नाथ। वैसे आप लोग भी बोलिए देव देव जगन्नाथ प्रपन्नाति विनाशनम् त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष पतितं भवसागरे। ये राजा इंद्रदुम्न जब भगवान जगन्नाथ नील माधव के दर्शन करते थे तो यही श्लोक बोलते थे। स्कंद पुराण का यह श्लोक है कि पतितम भवसागरे, मैं ये भवभूत संसार में पड़ा हूँ, त्राही मां पुंडरीकाक्ष हे कमल नयन, मेरा इस भव संसार से आप उद्धार करें। जैसे शंकराचार्य कहते हैं यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पाही पाही मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। पुनरपि जननम, फिर बारंबार जातस्य हि ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म, मैं गिर चुका। ऐसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ऐ नंद तनंज किंकरम पतितम माम विश्व में भगवान। तो सारे आचार्यों का प्रार्थना का सार यही है कि हमको इस संसार विषय से मुक्त करके आपके चरण कमल की प्रेम भक्ति रस को दीजिए। आइए श्री जगन्नाथ अष्टकम के पंचम श्लोक पर विचार करते हैं। उसके पहले उसको गाते हैं। कृपा करके आप सभी वैष्णव ध्यान से सुनिए। देखिए आपके पास कागज है, प्रेम से बोलिए पीछे हमारे। रथारूढ़ो गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटले प्रादुर्भावं प्रतिपदमुपाकर्ण्य सदय दया सिंधु बंधु सकल जगतां सिंधु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे।
जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे।
रथारूढ़ो जो रथ के ऊपर विराजमान है, रक्षण पूरी में चलते हैं, पथी रास्ते पर मिलित साथ में मिलकर उदेव पृथ्वी के देव स्वरूप ब्राह्मण पटले समुदाय ब्राह्मण समूह स्तुति प्रार्थना करते प्रादुर्भाव प्रेम भाव से प्रतिपदम प्रत्येक पद को प्रत्येक श्लोक को उपकारण्य जो ध्यान से सुनते हैं सदय जो दया से युक्त है दया सिंधु जो करुणा के सागर है बंधु हितैषी परम मित्र सकल जगता संपूर्ण जगत के सिंधु सुतया लक्ष्मी जी के साथ जगन्नाथ सारे जगत के नाथ स्वामी ये मेरे प्राणनाथ नयन पथगामी मेरे दृष्टि पथ में भवत्यो पधारिये मेरे ऐसे सरल है ये श्लोक जगन्नाथ जी की जो मुख्य लीला है रथ यात्रा महोत्सव उसी को श्री चैतन्य महाप्रभु स्मरण कर रहे हैं। हम बार बार ये चर्चा कर चुके हैं कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु राधा भाव में अपने प्राण प्रियतम श्री जगन्नाथ के चरणों में ये प्रार्थना दे रहे हैं पूरी धाम में। प्रभुपाद की परम करुणा है हम सब पर कि ये दिव्य भगवत संवाद हमें सुनने का अवसर मिलता है, नहीं तो देवताओं को भी दुर्लभ है। लेकिन अहेतु की करुणा है गुरु वैष्णव की कि हम लोगों का वाणी मन कुछ ना कुछ इस भगवत संवाद सुनने में लगा है, यही हमारा सौभाग्य है। देखिए जो कान है ना इसकी सार्थकता हरी कथा सुनने में है। हमारे सुभाषितम में लिखा है वेदों में श्रोत्रम श्रुते नैव न कुंडले, ये जो कान है वो कुंडल पहनने से अच्छा नहीं लगते, वो शास्त्र का श्रवण करने से अच्छा लगता है। दाने न पाणी, ये जो पाणी है वो साधु वैष्णव हरि शरण में कुछ देने से अच्छे लगते हैं, कंगन ब्रेसलेट पहनने से ही नहीं। विभाति कायम करुणा पराणा परोपकाराय सताम विभूति, हमारे भारतीय वेद कहते हैं कि जो परोपकारी मनुष्य है उसका सब कुछ सताम संतों का सब कुछ दूसरों के लिए हरि सेवा के लिए। तो श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्र, ये कान का आभूषण है शास्त्र को सुनना है। मैं कभी कभी कहता हूं ये कान भगवान ने हमें केवल चश्मा फ्रेम के स्टैंड के लिए नहीं दिया, ये भाई चलो एक उपयोग भगवान ने इसलिए दो दिया होगा कि आगे चलकर इसको नंबर आएगा, क्योंकि बाकी बिहारी को देखेगा नहीं, सब विषय भोग देखेगा तो नंबर तो आएगा। आजकल तो बच्चों को भी आ जाता है ना छोटे छोटे बिगड़ गया खान पान, इनके लिए नहीं है, किन के लिए? भागवत में लिखा है 10-80-3 राजा परीक्षित कहते हैं अपने जीवन का अनुभव, सवाज्ञया तस्य गृणान् गृणीते करो च तत्कर्म करो मनश्च स्मरेत वसंतम स्थिर जंगमेशो श्रृणोति तत्पुण्य कथा सुकर्णम। सुखदेव जी के चरणों में महाराज परीक्षित। ऑलमोस्ट 6 दिन समाप्त हो चुके हैं भगवत कृष्ण चरित्र का 80वां अध्याय सुदामा चरित्र, तो 6 दिन बीत चुके हैं और तब ये कह रहे हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी, स्थिर जंगमेशु, जो चार अचर में जो वसंत वास करते हैं, वे भगवान का स्मरण करने के लिए मन मिला है, और सब आज तस्य गृणान गृणीत, ये जो वाणी मिली है उस भगवान श्री कृष्ण का गुण गाने का, करो जो तत्कर्म करो हरिशु, ये जो कर मिले हैं वो भगवान की सेवा के लिए मिले हैं। जैसे महाराज अम्बरीश, करो हरे मंदिर मार्जना दिशु, पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी स्वयं मंदिर में पोता लगा देता, झाड़ू लगा देता, ऐसा नहीं कि नौकर रखा था कर देना आरती घुमा देना बॉस के और प्रणाम पाए, स्वयं राजा परीक्षित बोल रहे हैं कि यह कर मिले हैं हरि सेवा के, कर सोई जो हरि सेवे, सूरदास ने भी कहा। और फिर कहते हैं श्रृणोति तत् पुण्य कथा सुकर्णम, भगवान से पुण्य कथा गाथा सुनने के लिए ये कान मिले। भक्त लिखा है उसने शिरस्तु तत् लिंगानी मान मेतर, ये सर मिला है बांके बिहारी के जगन्नाथ के चरणों में झुकाने के लिए। तत् विष्टु चक्षु, ये आंख मिली है उनको देखने के लिए। अंगानि विष्णु अथ तत् जनाना पादो दतम्यानि भजन्ति नित्यम्, ये जो अंग मिले हैं जो भगवान विष्णु है, अंगानी विष्णु अर्थ तत् जनाना, और उसके जो प्रेमी भक्त है तत् जन, उसके भक्त वैष्णव, पादो दतम तत् भजन्ति, भगवान के चरण और भगवान के भक्तों के चरणों का जल का भजन करने के लिए जीवन सार्थक। बहुत ऊंची बात बोली जा रही, जैसे कल आप लोग वैष्णव प्रसाद की महिमा सुन रहे थे, भगवत प्रसाद की, नारद जी को इतना ऊंचा स्थिति प्राप्त हो गया कि विश्व ब्रह्मांड में ही नहीं आध्यात्मिक जगत में भी, वैकुंठ वृंदावन अयोध्या कोई भी स्थान, नारद जी का वीजा पासपोर्ट कंफर्म, उसको कोई नहीं रोक सकता। इवन भगवान रुक्मणी के बेडरूम में भी वो जा सकते हैं एनी टाइम, नहीं तो वहां तो कम से कम नौकर करने की जरूरत, बताओ कितना ही कैसे क्यों मिली है स्थिति, इस तरह का प्रेम, इस तरह का ऊंचा स्तर। वो स्वयं कहते हैं बद्री का आश्रम में व्यास मुनि से, भागवत में है 1:5:25, उच्चिष्ट लेपा अनुमोदितो द्विजे, बस उन वैष्णव ब्राह्मणों का जो उच्चिष्ट प्रसाद था भगवत अर्पित करके वो भोजन खाते थे, महा का उसने कृपा करके मुझे दिया, सकृत्स्म भुंजे तत्पास्त किल विषम, बस एक कवर मैंने खाया उस साधु ने जो मुझे प्रसाद दिया, भुंजे पास्त किल विषम, मेरे जितने पाप थे अविद्या थी किलबिश थे कलयुग के, भुंज नष्ट अपास्त समाप्त हो गए। और जब विषय भोग वासना पाप कर्म समाप्त हो गए तो हृदय शुद्ध हो गया। तद्धर्म एव आत्मरुचि प्रजायते, और मेरी भगवान श्री कृष्ण के परम धर्म भक्ति धर्म में आसक्ति हो गया, रुचि हो गया। क्या करने से? केवल भगवत अर्पित वैष्णव आश्रय में प्रसाद, भक्त पद राज भक्त पद जा भक्त भुक्त अवशेष दीन महाभक्त, ये महिमा है भगवान की, भगवान के आश्रय लिए हुए प्रेमी भक्तों की। तो यहाँ पर परीक्षित जी कह रहे हैं कि अंगानी विष्णु तत् जनाना, नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने लिखा तस्मिन जने तद भेदा अभावात, एक सूत्र है कि भगवान में और भगवान के भक्तों में कोई भेद, तस्मिन जने उस भगवान के जन्म में तदा भेद डिफरेंस अलग अभावात, कोई भेद, इसलिए नारद की कृपा पात्र प्रेम भक्ति से युक्त नल कुंवर मणिग्रीव ने भागवत में यही मांगा दामोदर से। भागवत के 10वें अध्याय में जब नल कुंवर मणिग्रीव का उद्धार हो गया, दशम स्कंद का 10वां अध्याय, और फिर ये दोनों भाई स्तुति करते हैं। पहले तो क्या दशा थी सब जानते हो, लेकिन नारद ने कृपा कर दिया और वास मिल गया वृंदावन में, प्रेम भक्ति प्राप्त है। सत्यवती ने यही कहा है ना कि ये दोनों भाई नारद की कृपा से केवल मोक्ष नहीं पाए, दूसरे लोग तो मोक्ष पाते थे, भगवान के हाथों मरते थे मुक्ति पाते थे, लेकिन ये लोग मरे नहीं, मोक्ष नहीं पाए, नारद की कृपा हो गई थी, इसलिए भगवान दामोदर को इसको भक्ति देना पड़ा, मुक्ति नहीं प्रेमा भक्ति। तथा प्रेम भक्ति स्वकामे प्रयच्छ न मोक्ष गृहो में स्थित दामोदरेह। पद्म पुराण सत्यव्रत मुनि ने नमामिश्वरम दामोदराष्टम यही कहा, कुबेरात्म जो पद मृत्येव त्वया मोचितो भक्ति भाजो दुतो च। त्वया मोचितो भी आपने उसको मुक्त किया, लेकिन जैसे दूसरे असुरों को मुक्त दे दे ऐसा नहीं, ये स्पेशल है भक्ति भाजो, इसको भक्ति मिला, भक्ति के भाजो मतलब पात्र हो गए। और तथा प्रेम वही प्रेमा भक्ति स्वता में प्रयच्छ, हे दामोदर मैं भी वही प्रेम भक्ति चाहता हूं, न मोक्षम गृह में स्थित, मुझे मोक्ष। और इतना शुद्ध बुद्धि, वे नल कुंवर और मणिग्रीव भागवत में दामोदर भगवान जो बंधे पड़े हैं छोटे से 3-3.5 वर्ष के, और ये चमकते हुए दोनों देवता हाथ जोड़कर कहते हैं, वाणी गुठा गुणानुकथने श्रवणो कथाया। हे दामोदर आप कृपा करें कि हमारी वाणी आपका गुण गाए, श्रवणो कथाया। और उस श्लोक के अंत में लिखते हैं, दृष्टिं सतां दर्शने भवतनुना। और हे भगवान हम हमारी आंखों से अब केवल भवतनु आपके ही तनु आपके ही स्वरूप ऐसे वैष्णवों का दर्शन करें। अब देखिए विलक्षण बात, भगवान से ये नहीं मांग रहे कि हम आपका दर्शन करें, हमारी आंखें भवतनुना आपके ही स्वरूप है, आपके ही प्रतिनिधि है, साक्षात हरित्वेन ऐसे गुरु वैष्णव का दर्शन। क्यों? क्योंकि जानते थे कि आपका दर्शन करके भी कोई हमारा उद्धार नहीं हुआ, हमारा उद्धार हुआ आपके प्रेमी नारद के दर्शन से। नारद ने हम पर कृपा किया इसलिए आपको दर्शन देने आना पड़ा, नहीं तो नल कौर मणिग्रीव थोड़ी एकादशी रहते, सोलह माला करते। आपने सुना कभी उनका रिकॉर्ड में कि वो सोलह माला करते? वो क्या करते थे वो बढ़िया खतरनाक बात लिखा गया है गंगा में, लेकिन ये सब कैसे हो गया? नारद दर्शन। और इसलिए भगवान भी बंधे बंधे वहां पर लिखा है सुखदेव जी ने, देवर्षि में प्रियतमो, नारद मेरा प्रिय है और उसने बोला है कि भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे, इसलिए दोनों कुबेर के पास पुत्रों के पास मुझे जाना पड़ रहा है, नहीं तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इन लोगों में और ना तो ये लोग भी प्रार्थना किए, लेकिन फिर भी मुझे जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नारद ने बोला। इसीलिए हमें जीवन का सार समझना है कि भक्तों की आश्रय लेना है, भक्तों का संग करना है, उसको आदर देके उसकी कृपा के पात्र बनना है। प्रति जन्म करी आशा चरणी रघुली नरोत्तम दास रहे बली। ये बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, इस पद का अंतिम लाइन, मैं प्रति जन्म में एक ही आशा करता हूं, हे वैष्णव आपके चरणों की धूली मिले। और क्या चाहते हो? बस हे वैष्णव आप हम पर अनुग्रह दया करके इतना कह दो कि तुम मेरे हो अपनार बलि। अगर आपने मुझे अपना लिया तो बिहारी जी को मुझे अपनाना पड़ेगा, उसको प्रार्थना करने की जरूरत। अगर प्रभुपाद ने अपना लिया तुम मेरे हो तो फिर जगन्नाथ जी मना नहीं कर सकते। किसी वैष्णव के हो जाना जीवन का लक्ष्य पाना कोई अंतर नहीं, ये सार वस्तु है। इसीलिए वर्तमान जो हमारे संघ में वैष्णव है उनको आदर देते हुए, उनसे उत्साह और भक्ति सीखते हुए, और ऑलवेज हमेशा एक ही मूल दासे रनु दास। अगर इस तरह हम समझेंगे शास्त्रों को तो अपराध से बचेंगे, अहंकार से बचेंगे और भगवान की कृपा के पात्र बनेंगे। बाकी सुनने के लिए तो बहुत लीलाएं हैं, बहुत स्तोत्र है, लेकिन ये नहीं आया जीवन में दासानुदास सेवा भाव, अमानिना मान देना, सबको मान देना और स्वयं मान की कि चैतन्य महाप्रभु का मानो हम लोगों के प्रति एक आज्ञा, प्रेम आज्ञा। और हमारे सारे वैष्णव परंपरा में आप देखिए सबने इसको फॉलो किया, सभी बड़े बड़े आचार्य पर छोटे से छोटे को मान दे। चैतन्य महाप्रभु तो पूरी में यहां तक कह दिए कि जीवे सम्मान दिवे जाने कृष्ण रति, वैष्णव की बात छोड़िए किसी भी व्यक्ति को आदर देना है क्योंकि उसके अंदर विदेश भगवान है। हो सकता है कि कोई मंदिर बनाया हो उसमें विग्रह हो, प्रतिष्ठा की न की, ब्राह्मण हो न हो, भगवान है कि नहीं पता नहीं, लेकिन इसमें कन्फर्म है विदेश अर्जुन किसी भी शरीर में, लक्ष 84 कोई भी शरीर में। तो पंडित समदर्शन के अनुसार भगवदगीता में सुनी स्व चपा के कुत्ते में भी, कुत्ते में भी भगवान देखना कितनी बड़ी बात है। हम लोग तो भक्तों में कुत्ते जैसा देख लेते हैं कभी, क्या कर रहा है कुत्ते में भगवान की बात तो बहुत दूर हो जाएगी हम लोग। और ये देखते थे हमारे नाम विठल के भगत नामदेव, वो रोटी बनाया तो कुत्ता लेकर भागा, तो ये घी लेकर भागा, अरे ठाकुर जी घी तो लगाते जाइए, पीछे घी लेकर दौड़ा। हमारी तरह का होता तो डंडा ही उठाना, उसको सीधा कर देता, अगर कैसे देखे कैसे जाता है। लेकिन देखिए ऐसे भक्त हुए हमारे जगन्नाथ दास बाबा जी के विषय में आप सुने होंगे सूर्य कुंड पर, उसमें छोटे छोटे उसमें भी भक्त, उसमें भी भगवत दृष्टि, बहुत ऊंची स्थिति है। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भावात्मनि, भागवत में एकादश स्कंध में उत्तम भागवत के लक्षण यही लिखे गए सब में भगवान पर। लेकिन हम लोग उतने ऊंचे नहीं है, लेकिन कम से कम जो तिलक कंठी और हरिनाम सेवा जप कर रहा है उनको तो प्रणाम, उनको उनमें तो भगवान देखे। ब्रह्मांड भ्रमित है कौन भाग्यवान में, ये भाग्यवान है कि इधर मंदिर में आज सेवा करते हैं, तब उनके दोष देखना और तब उनके अपराध का प्रश्न ही कहां। हम रोज बोलते हैं वंदे हम श्री गुरु, श्री गुरु ये तो पता है गुरुन वैष्णवान, गुरु को प्रणाम है, गुरु मतलब शिक्षा गुरु को प्रणाम है और वैष्णवान सब वैष्णव को प्रणाम। और बोलने के बाद प्रैक्टिकली क्या बोला, प्रणाम करके मानो परमिशन ले लिए कि तुम्हारा अभी खैर नहीं। प्रणाम के पीछे भाव क्या है, यही भाव। तो प्रसाद की बात हो रही, यही प्रसाद है। और ये सब कब होगा, सुनने से। जो व्यक्ति सुनता है ना अच्छी तरह से परंपरा में गुरु शास्त्र से, उसको सुधरने के पूरे चांस है। सुनना ही सुधरना है मेरी समझ से तो, और जो बोलता है ना उसको बिगड़ने के पूरे चांस है क्योंकि उसको सुनता ही नहीं ना वो। श्रवण भक्ति, क्योंकि सुनेगा तो कुछ ना कुछ ज्ञान बढ़ेगा, कुछ ना कुछ वो अच्छा समझेगा नहीं ऐसा है ऐसा, कुछ तो फर्क पड़ेगा। लेकिन आज बीमारी है बोलने की, इसी को हमें बदलना है स्वभाव को। व्यक्ति सुखी नहीं होगा, हम देखते ना हम आनंद के लिए सुखी होने के लिए घर बदलते, वस्त्र बदलते, बिजनेस बदलते, लेकिन हमारा स्वभाव नहीं बदलते। जब तक ये नहीं बदलेंगे ना आप कुछ भी बदलो, ना आप सुखी हो सकते हो ना आपके द्वारा दूसरे लोग सुखी होंगे, क्योंकि हम स्वयं सुखी नहीं तो दूसरे को कहां सुख दे पाओ। दुनिया में अच्छे आदमी मत ढूंढो, जो भी आदमी है उसमें कुछ अच्छा ढूंढो, ये दृष्टि है। जो भी है उसमें कुछ अच्छा है अगर हमारी दृष्टि हो तो, नहीं तो अभी दुर्योधन की तरह जाओ हस्तिनापुर में सबसे बेस्ट अच्छा आदमी लेके आओ, बोले दिन भर घुमा, बोले कोई अच्छा है ही नहीं गुरु जी। ऐसी है ना महाभारत में दृष्टांत। और युधिष्ठिर को बोला बुरा ढूंढ के आओ, बोले कोई बुरा नहीं, बोले ये क्या हस्तिनापुर में बुरे नहीं थे, शकुनी नहीं था, दुशासन नहीं था, पूरी टीम थी, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर को कोई बुरा दिखाई, क्योंकि आत्मवत जब अपना देखते तो दूसरे में, और उसको कोई अच्छा ही नहीं मिला बोलो धृतराष्ट्र के सुपुत्र जी को।
पहला प्रहलाद विक्रम,
उसको कोई अच्छा ही नहीं मिला। किसका दोष है? अपनी दृष्टि। इसीलिए इन शास्त्रों के सार को समझते हुए सभी भगवान के हैं, सब में भगवान है। मेरा सौभाग्य है कि इनका दर्शन संग मुझे मिल रहा, इसके गुण को हम पकड़े और आदर देकर सेवा करें। इस तरह अगर हम साधना करेंगे तो बहुत जल्द शीघ्रता से बांके बिहारी जगन्नाथ जी के अनुग्रह को, कृपा को हम प्राप्त करें। इस विधि से, यही विधि है। और जब उन वैष्णव गुरु का जब कृपा होगा तब आप गीता भागवत या स्तोत्र के अर्थ को, भाव को हृदय में समझ पाओगे। क्योंकि हम ये मत समझो कि मुझे संस्कृत आता है, मैं रट लूंगा, मैं इनसे सुन लूंगा, मैं आवृत्ति कर लूंगा, बोल दूंगा तो समझ जाऊंगा। नहीं, ये सब भी कर लोगे तो फिर होगा नहीं। बिना भगवान की और भगवान के प्रतिनिधि वैष्णव गुरु की कृपा के अलावा आप समझ नहीं पाओगे। तापि ते देव पदाम्बुजद्वयं प्रसाद लेश अनुग्रहित एव हि। ब्रह्मा जी ने कहा भागवत में कि मैं ब्रह्मा, चार दिमाग है मेरे, कितने, चार सिर है ना, तो चार दिमाग तो होंगे, और चारों दिमाग खाली नहीं हमारे ग्रह, चारों दिमाग में चारों वेदों का ज्ञान है, और वो ज्ञान किसने दिया? डायरेक्ट भगवान। फिर भी उसको चक्कर हो गया, नहीं समझ पाए, लेकिन बाद में समझ पाए कि प्रभु आपको, आपकी लीला को, आपकी कृपा के बिना ब्रह्मा भी नहीं समझता। हम क्या चाहते, हमारा तो एक ही दिमाग है, वो भी छोटा, वो भी मंद, किसी का तो बंद पूरे वो क्या समझेगा? अरे ब्रह्मा, ब्रह्मा कह रहे कि मुझे चक्कर आ गया। सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु को कहे कि बड़ा तेजस्वी सन्यासी है, युवान है, क्या भावुक की तरह नाचता कहता है, बैठो इधर, बैठ पड़ो मेरे पास। महाप्रभु बिल्कुल विनम्र, ठीक है, मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे विद्वान का मुझे संग सुना है, बैठ गए। और सार्वभौम वेद के बाद वेदों के अद्वैतवादी थे ना, पहले तो बृहस्पति क्या उतार है, मच्छर भी संग कर रहा है। देखो ऐसे संग नहीं करना चाहिए भक्तों का, मच्छर जैसे कुछ बहुत संग करते कष्ट दे देंगे। ओ जुआड़ी तो भाई, जैसे चंदन संग करते वैसे करना चाहिए, अपने स्वरूप स्वभाव वाणी से सुख देना चाहिए अन्य को, ये संग तब कृपा मिलेगी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। सात दिन तक बोलते रहे सार्वभौम भट्टाचार्य, चेतन महाप्रभु एकदम उसके मुख को देखते हुए मौनम, कमल जैसी आंखें, चमकता सूर्य जैसा स्वरूप, और आनंद मुद्रा में बस सुन रहे ध्यान। भट्टाचार्य कहे कि मैं एक, सात दिन हो गया, आप एक शब्द नहीं पूछ रहे हो, न कुछ बोल रहे हो, बस सुन रहे हो। मैं सात दिन से बोल रहा हूँ, बुझी के ना बुझी, आमी ना बुझी, तुम सुन रहे हो, कोई समझ रहे हो कि नहीं, वो मैं नहीं समझ रहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कुछ नहीं। लेकिन महाप्रभु तो सब समझ रहे थे, उन्हें फिर मुंह खोला, तो मैं सब समझ रहा हूँ, जो शास्त्र के श्लोक आप बोल रहे हो वेद के व्यास के, वो तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन जो उसका अर्थ कर रहे हो ना, वो समझ में नहीं आता। सूर्य को सब देखते हैं, लेकिन जब बादल ढंग जाते हैं ना, तो सूर्य नहीं देखता, सूर्य की तरह वेद क्लियर है, लेकिन आपकी व्याख्या जो है ना, वो बादल की तरह उसको ढंग रही है। पहली बार किसी ने सार्वभौम को ऐसे चपाट ऐसे चैलेंज किया था, उसके भी दिमाग हो चुके हैं, सब सन्यासी को सिखाते थे, और आज एक छोटा सा बालक सन्यासी उसको बोल रहा है। और जो कन्विंस हुए फिर, तब गोपीनाथ आचार्य जो उसके बने हुए थे, वो भक्त थे, उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य को उनको कहा, बहुत सुंदर प्रसंग है मध्य लीला में 11वां अध्याय, जब महाप्रभु पुरी में प्रवेश करते हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य से उसका मिलन होता है। तब पहले समझाए थे गोपीनाथ जी, आप समझो ये सन्यासी साधारण नहीं है, इनका आकर्षण, इनका ज्ञान, ये भगवान श्री कृष्ण साक्षात। लेकिन बोले नहीं नहीं, सार्वभौम नहीं मानने को तैयार, तो अब साक्षात्कार हुआ तब। लेकिन वहां लिखा गया है कि सार्वभौम भट्टाचार्य गोपीनाथ ने कहा उनके बने हुए कि आपको वेदों का ज्ञान है, आप शंकराचार्य के पक्के कट्टर फॉलोअर भी है, इतने लोगों के गुरु है, राजा भी प्रतापरुद्र भी आपको बहुत मानता है, पूरी के आप खजानसी हो, मंदिर के अध्यक्ष थे सार्वभौम भट्टाचार्य, पूरी मंदिर के उड़ीसा के सब हो, लेकिन फिर भी आप भगवान को नहीं समझोगे चैतन्य को। क्यों? क्योंकि भगवान को वही समझ सकता है जिस पर भगवान की कृपा, और भगवान की कृपा डायरेक्टली मिलती यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, उनके भक्तों के गुरु की कृपा से, और वो आप पर नहीं है। ईश्वर कृपार तत्व जानी बारे पारे। देखो कितना सुंदर कहा कि ईश्वर कृपार लेश हित जहारे सहित, वही व्यक्ति ईश्वर तत्व को जान पाएगा। अगर कृपा नहीं, कृपा पारावार, हम कितना हो साधन कर ले, तप कर ले, हमारा उद्धार हमारे साधन साधना से नहीं होता, हमारा उद्धार होता है कृपा से। लेकिन हमारी साधना देख के गुरु भगवान कृपा करते हैं, नहीं तो आपको कृपा से होता है तो हो ही रही होगी, कृपा से ही होगा। लेकिन कृपा कब होगी, नेक्स्ट प्रश्न, कृपा कब होगी? जब हम आज्ञा में साधना करें, भक्ति करें, तब वैष्णव की कृपा से भगवत कृपा हमारे द्वार तक पहुंचती है। इसलिए साधना का साथ करता, जैसे दामोदर लीला में बांध दिया, कृपया सिद्ध स्वबंधन है, सुखदेव जी ने क्या लिखा, दृष्टवा परिश्रमम मात्र, यशोदा ने बहुत परिश्रम किया, रस्सी लाई नहीं बन रहा था, और दूसरी रस्सी, पूरे गोकुल की रस्सी, और देखा कि माता यशोदा को पसीना निकल गया, और भगवान दामोदर ऐसे हंसते हुए खड़े थे वहां। तो कृष्ण ने, सुखदेव जी ने कितना मधुर श्लोक लिखा, शायद 10, 9, 18, कि दृष्टवा परिश्रम, भगवान ने देखा कि ये परिश्रम कर रहे, क्यों परिश्रम कर रहे, मुझे बांधने के लिए। तो माता का परिश्रम देखकर कृपया सिद्ध स्वबंधन है, उसको तो कोई नहीं बांध सकता, लेकिन कृपा करके भगवान स्वयं बंध गए। तो इसमें कृपा और प्रयास दो है ना, ऐसे अध्याय समझे ना, दो उंगुल आप सुन चुके हो, दो उंगली क्या है, यही है कि हम प्रयास करें, मतलब हम साधना करें, जप करें, सेवा करें, वैष्णव की मंगला करें, एकादशी करें, भागवत की हमारी साधना हम करें, प्रयास लगे रहना, और कृपा में और भगवान के पकड़ में आ जाए। एकदम लीला से संदेश है, सरल जीवन में उतार मिला है। तो कृपा पात्र बनने के लिए इस तरह का जो हम बता रहे हैं, भाव के साथ, आदर के साथ, वैष्णव को विष्णु का विग्रह मानते हुए, हर एक भागवत भागवत शास्त्र, हर एक भागवत भक्ति रस, इस मूड में आदर सम्मान देते हुए लगे रहेंगे, तो फिर भगवत लीला को समझेंगे इतना ही नहीं, शास्त्रों को वो लीला आपके हृदय में प्रस्फुटित होगी, और एक दिन नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस परिव्रज काचार्य, ये जो बोले जाते हैं ना जय बोलने, वो स्थान मिल जाएगा, हम भी उस लीला में एंटर हो जाएंगे, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, नित्य लीला में प्रवेश कर जाए। तो पहले तो उस लीला को प्रवेश करने के पूर्व वो लीला दिखनी चाहिए, वो लीला देखने पहले वो लीला समझनी चाहिए, वो लीला समझने से पहले वो लीला सुननी, सोना नहीं चाहिए, क्या कहना चाहिए, सुननी चाहिए, पहले तो सुननी चाहिए, फिर वो लीला समझेंगे कृपा से, फिर वो लीला दिखेगी, और फिर नित्य लीला प्रविष्ट हम पहुंच पाएंगे, स्टेप बाय स्टेप, सीधी विधि। रथारूढ़ो गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटले, स्तुतिर् प्रादुर्भावं प्रतिपदमुपाकर्ण्य सदय, दया सिंधु बंधु सकल जगतां सिंधु सुतया, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। वे जगन्नाथ जो करुणा की मूर्ति है, करुणा पुरुषोत्तम है, कृपा पारावार है, क्या कृपा किए, रथारूढ़, रथ के ऊपर आरूढ़ हो गए, रथ पर विराजमान हो गए। देखिए कृपा जगन्नाथ की। उदाहरण देते हमारे आचार्य कि दर्दी इतना भयंकर रोग से ग्रस्त होता है तो हॉस्पिटल दवाखाना नहीं जा सकता, डॉक्टर को ही घर पर बुलाना पड़ता। ये कलियुगी जीव भगवत धाम स्वरूप मंदिर दर्शन को नहीं जाते तो जगन्नाथ इतने कृपालु बोले मैं ही नीचे उतरता हूँ रोड पर, ये लोग तो नहीं आते मैं जाता हूँ। ये कृपा है कि अपने दर्शन से, प्रसाद से, कीर्तन से उसका मंगल करने के लिए स्वयं मंदिर से बाहर, और कोई विग्रह बाहर नहीं निकलता। जगन्नाथ जी है स्पेशल, उत्सव मूर्ति नहीं, डायरेक्ट मूल ही बाहर निकलते। बिहारी जी को आप साबित कर दे गिरधारी, कोई भी विग्रह एक बार प्रतिष्ठा हो गई फिर इसको वो मंदिर में ही चेंज हो सकते, लेकिन बाहर रोड पर। लेकिन ये ठाकुर ऐसे है दयालु कि रोड पर जाते हैं, निकलते हैं, और ऐसा नहीं कोई भी छू सकता है। जब लाया जाता है पांडे विजय के द्वारा, पहले तो पूरी में भी नियम था कोई भी रथ पर चढ़ सकता है और जगन्नाथ जी को आलिंगन, लेकिन अब इतनी भीड़ हो गई और बहुत लोग डिस्टर्ब होने लगे इसलिए कम से कम मना कर दिया। नहीं तो पहले नियम था ना, पूरी में तो केवल हिंदुओं को एंट्री था और लोगों को तो थे ही नहीं। लेकिन उस रथ यात्रा के समय कोई भी हो रथ पे ऊपर भी जा सकता है, आलिंगन भी कर सकता है, लेकिन बाद में व्यवस्था नहीं हो पाती इसलिए आजकल स्टॉप कर दिया, बंद कर दिया गया। बोले ब्राह्मण दीक्षित है कि नहीं, दीक्षित है कि नहीं, शिक्षित भी नहीं, दीक्षित भी नहीं, परीक्षित कुछ नहीं फिर भी जगन्नाथ जी अपनाते हैं, सहवास देते हैं, ये कृपा लीला र चढ़ी र प्रभु रथे र ऊपर। क्या है भगवान रथ पर क्यों चढ़ते? लीला करने के लिए। रथ पर चढ़ना ही इनकी लीला है, भक्तों के दर्शन, उनको संग देना, उनकी स्तुति सुनना, ये सब उनकी लीला में आता है। ये चैतन्य चरितामृत अंत मध्य लीला 13वां अध्याय जहां जगन्नाथ रथ यात्रा का वर्णन है, तो वहां कृष्णदास कविराज महानुभाव लिखते हैं कि जगन्नाथ जी रथ पर क्यों चढ़ते, बोले लीला विलास की। लीला य चढ़ी र प्रभु रथे र ऊपर आर दुई रथे चढ़े सुभद्रा हलधर। और दो रथ इनका स्पेशल है, आपके नैरोबी में तीनों एक में बैठ जाते हैं, है ना, एडजस्ट कर लेते हैं भाई बहन लेकिन पूरी में तीनों के लिए अलग अलग रथ। जगन्नाथ जी का रथ अलग है, 45 फीट ऊंचा है, 65 टन वजन होता है उसमें, 65 उसमें 16 चक्के लगे हैं, पैड़े चक्का में 8-8 दोनों साइड दिया गया है वर्णन। और दूर से आपको कैसे पता चलेगी ये जगन्नाथ का है? उसको जो कपड़ा ढंकाया जाता है वो येलो और रेड, रेड कपड़ा में येलो डिजाइन कॉन्ट्रास्ट दिया जाता है उसको, तो पता चल जाता है ये नंदी घोष रथ है। कौन सा रथ है? जगन्नाथ जी के रथ का नाम है नंदी घोष। शंख चूड़ रस्सा लगाया जाता है बड़ा खींचने के लिए उसको। और दुई रथ सुभद्रा और बलराम, बलराम जी का ताल ध्वज रथ है, वो एक फीट नीचा है, 44, दो पहिए कम है उसमें, 14 पहिए लगते हैं उसमें, उसकी वासुकी रस्सी है उनकी भी, उसके ऊपर पताका है, घोड़े लगते हैं, लेकिन बाहर से दूर से कैसे पता चलेगा? ग्रीन रेड कॉन्ट्रास्ट, हाँ ये ग्रीनिश उसमें जो दिया गया है दूसरा कपड़ा, हाँ ये दाऊ है, दाऊ दया समझ में आ जाता है। और सुभद्रा जी ब्लैक एंड रेड, छोटा रथ है उसका, 12 पहिए, एक फीट और छोटा, 43 उसका। ये तीनों भाई के रथ, हर दो रथे चढ़ी सुभद्रा। अक्षय तृतीया जो होती है ना उससे लेकर अमावस्या, मतलब रथ यात्रा के एक दिन पहले, ये 2 महीना तक रथ का काम चलता है पूरी में। 205 कारपेंटर जो वंश परंपरा से चल रहे हैं वो 60 दिन में ये तीनों रथ बना देते हैं। विशेषता यह है कि एक ही बार यूज होता है, अगले साल नया बनेगा, हमारा तो यही ठीक है हम लोग के लिए लेकिन वहां पर बाद में क्या होता है रस का, बस बावड़ा यात्रा जब हो जाए, बावड़ा यात्रा मतलब रथ यात्रा में प्रभु अषाढ़ी तीज को श्री मंदिर से, जिसको सुंदराचल कहते, वहां से गुंडीचा मंदिर जिसको वृंदावन कहते वहां जाते हैं, लेकिन वहां 9 दिन रहते हैं। जो मंदिर गुंडीचा महाप्रभु ने मार्जन किया था, गुंडीचा इंद्रदुम्न की रानी का नाम, और वहां से 9 दिन के बाद वापस रथ आता है जिसको उल्टा रथ कहते हैं, उड़िया में बाउडा यात्रा कहते हैं। और जब वापस उसी रथ में आ गए, जगन्नाथ जी विराजमान हो गए अपने सिंहासन पर, तब इस रथ को क्रश कर दिया जाता है। वो जो भोजन बनता है ना महाप्रसाद शाला, उसमें लकड़े, वही जो वहां गैस चूल्हा नहीं है, वहां गैस नहीं है सिस्टम, यही चूल्हा चलता है, उसी में लकड़ा इस्तेमाल किया जाता है। साग होता है ये अश्वन अर्जुन, ऊंचे ऊंचे लकड़े है, लेकिन उसी में प्रसाद। बड़ा देखा है आप लोगों ने पूरी में किचन, ये हमारा जितना एरिया है ना, ये इससे बड़ा है सारा, 1.5 एकड़ में केवल किचन। लक्ष्मी जी साक्षात बनाती है वहां, क्या विशेषता है। आज भी लोग कहते हैं कि वहां पर भात के ऊपर भात के ऊपर भात के ऊपर हांडी 11 हांडी लगता है, और आग जलाई जाती तो पहले 11 ऊपर वाली पकती है। हम लोग गाय करेंगे तो नीचे वाली स्वाहा हो जाएगी ऊपर पकड़े पर, लेकिन वहां पहले वो पकता है। ये दिव्य प्रसाद की व्यवस्था, लाखों लोगों का प्रसाद बनता है एक साथ, इतना बड़ा किचन विश्व में कहीं नहीं, ये केवल पूरी में, क्योंकि तो प्रसाद ही लीला है उद्धार करना भगवान जी का। ये दिव्य है सर, संभव नहीं, आप ट्राई करो तो भी होगा नहीं, क्योंकि केवल वहां ही पूरी धाम की ये विशेषता। तो ये रथ के ऊपर भगवान चढ़ते हैं, और दिन कौन सा है अभी हम बोले आषाढ़ी बीज, आषाढ़ द्वितीया, क्योंकि ज्येष्ठ पूर्णिमा स्नान यात्रा, जगन्नाथ जी का बर्थडे जिसको हम कह सकते हैं, अभिषेक किया जाता है 108 घड़े से, तीनों भाई भाई बहन को लाया जाता है स्नान मंडप में, जो सिंह द्वार के आगे बड़ा दंड है, बड़ा आंगन वहां से दिखता है, और 108 घड़े से वहां पीछे अश्वद्वार है ना, जहाँ कोली वैकुंठ है, जहाँ जगन्नाथ को समाधि दी जाती है, वहां एक कुआ है जो साल में एक बार खोला जाता है, जिसमें सारे तीर्थों का जल माना जाता है, उसी दिन आवाहन होता है पूर्णिमा, और पंडित लोग निकालते हैं वो जल, और तीनों भाइयों को 108 घड़े 35, 33, 30 बांट देते हैं सुदर्शन के लिए बचे, और उस घड़ों से स्नान करा, जिसको स्नान यात्रा हम कहते हैं। इस कान में भी हम लोग मनाते हैं ये महोत्सव उसी दिन, सभी जहाँ रथ यात्रा होती है वहाँ, मतलब रथ यात्रा के आगे, और फिर बढ़िया भोग लगता है, गर्जवेश होता है, वो गणपत्य भट्ट की कथा से जब परिचित हो, और फिर बढ़िया प्रसाद खाने पर अभी जगन्नाथ बीमार था या क्या लीला है, लेकिन सिखा दे कि बहुत नाया बहुत खाया तो बीमार होगा। महाराज हमारे सुना दे कि जगन्नाथ भी खाने से बीमार होते तो आप लोग नहीं होंगे, इसलिए कम खाओ। जितने लोग बीमार हुए खाने से हुए, बिना खाने से कोई बीमार, खाने से ही हो रहे, ये तो इनकी तो लीला है। बाहर से बीमार है लेकिन अंदर से दयिता पतियों को सेवा देते हैं, लेकिन और इटरनली मूड क्या, एकदम अंदर में क्या है, पंचदश दिनेश्वर महालक्ष्मी लैया तार संग क्रीड़ा करे निवृत वसी। वो तो लक्ष्मी जी को स्पेशल टाइम दिया 15 दिन के लिए, उनके संग एकांत में लीला। कुछ कुछ बातें बोलने में भी कुछ लोग ऐसा प्रश्न करते हैं ना, हमको एक व्यक्ति पूछा भारत में कि जगन्नाथ अकेले लक्ष्मी जल लीला करते हैं, चेतन चैतन्य तो यही कहता है कि निवृत अकेले में पंच दिन लक्ष्मी के साथ, तो बलराम किधर थे, बड़े भाई थे फिर भी, अब बताओ है क्या क्या। तो मैं उसको कहा नहीं वो भी रेवती जी के साथ गए थे और सुभद्रा जी को अर्जुन ले गए, कुछ तो कॉमन सेंस अभी इसका मैं उत्तर नहीं, लेकिन वो अपनी बुद्धि से कुछ सुनते तो दिव्य बात, बात तो अपने से ही करेंगे ना। बोला लक्ष्मी के साथ अकेले तो बड़े भाई तो थे ना, मैंने कहा नहीं था 15 दिन होगी छुट्टी में गए रहती भैया ले गए, वो तो ले गए, आप समझना चाहिए लीला भगवान के विग्रह के साथ भी, उस वो कोई कहने की बात है, एसिडीज लेते हैं ना आरती, इसीलिए भवार तात्पर्य क्या है उसका, जैसे यहां पर श्लोक है रथारूढ़ो गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटले, बराबर ठीक से नहीं पढ़ा है, तो पूछा कि भगवान की रथ यात्रा में भूदेव थे ब्राह्मण पृथ्वी के देव, और पटेल भी थे पटेल
अरे भाई रतियाना में तो भूदे वो यता पटेल वो यता तू तो पटेल नहीं है पटले पटेल मतलब यहाँ कोई पटेल है ना बहुत सारे पटेल ओह पटेलों का तो कहना है बोले पटेल भी थे भारत में है ना वो एक पूछा एक व्यक्ति कि व्हाट इज द कल्चर ऑफ पटेल मैंने रिप्लाई था पर बोला कि एग्रीकल्चर इज द कल्चर ऑफ पटेल अरे व्हाट व्हाई हाउ कैन पॉसिबल एग्रीकल्चर इज द बोले यस बिकॉज पटेल इज एग्री विद एवरी कल्चर दैट्स व्हाई उसको कोई प्रॉब्लम नहीं गंगा गए गंगा दास जमुना गए जमुना दास इसलिए पटेल बोले भगत होते पटेल कोई भगत नहीं होता वो दूसरे को अपना भगत करने के प्लान में होता है तो दिखाने के लिए भगत होता है लेकिन उसका प्लान होता है कि किसको कैसे चिपिया मान लो बहुत बुद्धिमान जाति है ये हमारे दो तीन गुरु भाई पटेल यूएसए में शो करो बोले मोटल चलाता हूँ हम जो नहीं मोटल मतलब होटल जैसे हाँ सबको भाड़े पे देते न्याय जो नहीं ना भाड़े आपको दौड़ जाओ नौकर लाइक बोलो भगवान ने दिया है तो पटले इसलिए कुछ बातों को ठीक से सुनना चाहिए विनोद की बात है लेकिन इसमें मैसेज है इसीलिए शास्त्र होते हुए भी सदगुरु की जरूरत इसका तात्पर्य इसलिए प्रभुपाद के जो भावार्थ है तात्पर्य ये हम लोग के लिए आवश्यक है नहीं तो पढ़ने सुनने के बाद भी हम लोग पूर्णता तक नहीं पहुंच पाए तो बोले कहाँ गए अपने कह दिया ऐसे ही कुछ लोग ऐसे ही दिमाग खाते हैं तो इसके लिए ऐसे ही जवाब देना पड़ता है क्या करें तो पंचदश दिन ईश्वर भगवान कर रहे थे फिर अंत में ये अषाढ़ी द्वितीया का सूर्य उगा तो रात में ही भगवान जगन्नाथ जी लक्ष्मी जी से कहे थे कि कल सुबह हम बाहर जाएंगे कृपा करके आप सम्मति दो लक्ष्मी जी ने भी प्रसन्नता से वादा किया था कि शाम को आ जाओ कि जैसे हम रात को सुना रहे तो जाओ तो चैतन्य महाप्रभु कविराज महानुभाव वहां लिखते हैं ताहार सम्मति लैया भक्त सुख दीते रथे चढ़ी आईला प्रभु विहार करी लक्ष्मी जी की सम्मति लेकर बाहर सम्मति लिया और बाहर क्यों जा रहे भक्त सुख दी थे क्योंकि उनके भक्त उनके दर्शन के बिना तरस रहे और ये भी अपने भक्त के दर्शन करना चाहते हैं ये तम इसलिए भक्तों को सुख देने के लिए रथे चढ़ी आईला विहार करी थे 15 दिन के बाद जैसे व्यक्ति घर से बाहर निकलता है सब देखता है क्या क्या है एकदम मूड में जगन्नाथ रथ यात्रा में यहां पर हम इस पर बोल रहे रथारूढ़ो गच्छन् भगवान रथ पर चढ़े रथारूढ़ो एक शब्द पर चैतन्य चरितामृत के सारे प्यार सुन रहे हैं इवन चैतन्य महाप्रभु जब वहां थे पुरी में तो सुबह सुबह अषाढ़ी द्वित रथ यात्रा के दिन समय से पहले जाकर ब्रह्म मुहूर्त में जाग ही जाते थे 3:30-4 बजे आज और 1 घंटा जल्दी चले इतना उत्साह इतना आनंद था चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ मंदिर में अपने भक्त मुंडली के साथ पहुंच गए क्यों इतना जल्दी जाने की क्या जरूरत है बोले उसको एक उत्सव देखना था कि जगन्नाथ जी रथ पर कैसे आते हैं जिसको पांडु विजय कहते हैं पहांडी वहां की भाषा में पहांडी पांडु विजय देखी बारे करी लगमन जगन्नाथ यात्रा कैला छाड़ी सिंहासन चैतन्य महाप्रभु पांडु विजय देखने के लिए कि कैसे जगन्नाथ सिंहासन छोड़ के रथ पर जाते ये मुझे देखना है और इसलिए चैतन्य महाप्रभु चलते थे और क्या देखा उसने बलिष्ठ दैत्य गण ये न मत्त हाथी जगन्नाथ विजय कराए करी हाथा हाथी बलिष्ठ दैत्य गण बड़े बड़े पहलवान बलवान जैसे मत वाला हाथी हो ऐसे बड़े बड़े पेट वाले हाथ वाले पंडे जगन्नाथ को उठाए थे क्योंकि जगन्नाथ जी का विग्रह बड़ा भारी है 8-10 पंडे मिलकर भी नहीं उठा पाते फिर उसको रस्सी बांध के दो और आगे क्योंकि जो नजदीक है वो तो उठाएगा दो इधर एक पीछे एक आगे उस तरफ दो लेकिन उतरे से नहीं उड़े से हाथ में गले में रस्सी बांधना पड़ता है और जो कुछ दूर जगह पर ऊंचा से वहां से वो लोग रस्सी से खींचते और ये लोग यहाँ से तब उठते हैं लेकिन कंटिन्यूस नहीं ले जा सकते 2-3 स्टेप चले तब करके फिर रखना पड़ेगा उसको फिर जोर लग और ये कौन है दैत्य गण प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये सबर जाति के लोग
मध्य लीला 13वां अध्याय हम कह रहे हैं, शायद आज 7वां 8वां ये सब श्लोक है, शुरुआत में ही। तो बलिष्ठ भगवान लिखते हैं वहां की ये सबर जाति के लोग हैं। सबर जो था ना विश्व वसु, जो नीलमाधव के रूप में सेवा करता था, जो स्पेशल उस समय उसको ये 15 दिन सेवा मिलती है ये अनवसर के समय, और वे बड़े बलवान है, और वे लोग उठा के रथ पर ले जाते हैं जगन्नाथ। बलवान होते हैं मतवाले हाथी जैसे, लेकिन एक व्यवस्था होती है पूरी में कि जगन्नाथ जी के विग्रह को रखने के लिए बड़े बड़े रुई के गद्दे बनाए जाते हैं, सेट 4-5-6 ऐसे, ताकि जगन्नाथ जी को उसके ऊपर रखा जाए। भजन होता है ना स्टेप, 2-3-10 स्टेप जल्दी रखना पड़ेगा, तो कहाँ श्री मंदिर, और मंदिर से गर्भगृह, फिर उपाई सीढ़ी, फिर वो रथ पर ले जाना, लंबा रूट है। इसलिए पंडे के लिए 2-3-10 कदम करके रखना पड़ता है, और धड़ाम से उस पर वो गद्दे पर रखते हैं। वो वर्णन है, प्रभु पदा खाते तुली हय खंड खंड, तुली सब उड़ी जाए शब्द है प्रचंड। भगवान जैसे ही जगन्नाथ उस गद्दे पर, तुली मतलब रुई कॉटन, उसका बना हुआ गद्दा लगा रुआ ये रखा हुआ, उस पे जाते ही वो फट जाता है और सारी रुई आकाश में उड़ने लगती है, क्योंकि सहन प्रभु पदा घाटे तुली है खंड खंड, गुजराती में भी समझ में आया ना हिंदी में, और तुली सब उड़ी जाए आकाश में रू उड़ने लगता है रुई सब, और हवा जोर से होता है। ये सेवा एक कथा है परमेश्वरी की, परमेश्वरी नाम के एक दर्जी था, वो ये पूरी जगन्नाथ का प्रेमी भक्त था, लेकिन कुछ कार्यवश उसको पूरी धाम छोड़ के दिल्ली में जाना पड़ा अपने परिवार के साथ, 2 लड़के 1 लड़की थी, वो कुरूप था, एकदम सुंदर नहीं था वो, और एक उसको यहाँ पे कौन सा क्या कहते हैं वो कुबड़ कुब्जा था ना ऐसा था, लेकिन बड़ा एक्सपर्ट था किसमें, ये तकिया गदाए गदाए गद्दा सब बनाने में, और इतना फेमस हो गया कि दिल्ली का बादशाह जो था उसने सुना कि ये एक्सपर्ट है, तो अपनी राजकुमारी के लिए जो दहेज में देना होता है और राज के भी जो गद्दे तकिया सब के लिए उसको स्पेशल रख लिया बढ़िया पगार से, कि नहीं यार तू और कोई काम करने की जरूरत, स्पेशल हमारा काम। और उसने एक दिन उसको दिया 2 गद्दे बनाओ जिसमें सोने के तार दिए और बढ़िया उत्तम क्वालिटी का रुई और कपड़ा भी उत्तम, और उसमें कहा कि जितना इसमें माणिक मोती लगाना हो तुम सजाओ, पैसे की फिक्र मत करना, लेकिन बढ़िया बनना चाहिए और इसकी कारीगरी तुम्हें मैं मुंह मांगूंगा, तो था ही एक्सपर्ट बना रहा, लेकिन क्या हुआ वो रुई गद्दा बना रहा था, उसको सोने के तार सी रहा था, उसमें रुई डाल के डिजाइन बना रहा था, उसी समय रथ यात्रा थी, आषाढ़ी बीज थी, और दिल्ली में उसको याद आया कि ओ आज तो मेरे जगन्नाथ रथारूढ़ो रथ पर आरूढ़ हुए होंगे, उसको मन उतरता, देखो ये विधि है, काम करते रहो फिर भी भगवत स्मरण, नामाश्रय करी यत्न मामनुस्मर युद्ध च वाली बात है गीता की, स्मरण करो और वो काम कर रहा है और उधर जगन्नाथ का याद कर रहा है, और तब उसको याद आया कि ये पांडी विजय जगन्नाथ जी के लिए गद्दा चाहिए, तो वहां सिलाई करते हो, हे जगन्नाथ जी दास की ओर से ये गद्दा स्वीकार करिए, हाथ से गद्दा गायब आने ध्यान रखो भाई धरा उपाड़ी ले, क्योंकि ये साक्षात है भाई दारू ब्रह्म कृपा करने के लिए, उधर गद्दा गायब, और वास्तव में वहां पहुंच गया जगन्नाथ जी, क्योंकि वो तो सेवक लोग रखते थे भगवान को आसन के लिए, और ये खुश हो गया कि वाह जगन्नाथ आपने मेरी सेवा स्वीकार की, इस नाचीज की भाव में आ गया, लेकिन राजा जब आया तो उसका भाव निकल गया, बोले किधर है 2 गद्दा दिया, बोले एक है, एक सत्य बताया कि महाराज आषाढ़ी बीज को पांडु विजय में मेरे याद आ गया और मैंने कह दिया कि सेवा स्वीकारो, तो जगन्नाथ जी ने स्वीकार कर लिया, पीके है क्या उल्लू बना रहे हम लोग को जो यू लागे क्या यहाँ बैठे बैठे कहा दिल्ली कहा तुम्हारा ओडिशा 2200 किलोमीटर वहां रह करके नहीं पहुंचता, यहां से पहुंच गया गद्दा, सत्य बोलो, बोले सत्य बोल रहा निश्चित है, राजा तो ऐसे मानेगा नहीं ना, बादशाह है मुगल था वो भी, उसने कहा कि तुम्हारी लालच बन गई, उत्तम रुई देखा कपड़ा देखा सोने के तार देखे, इसलिए तुम्हारी लड़की या तुम्हारे रिश्तेदार के घर तुमने भेज दिया,
पैसा कमाने चोरी कर लिया है राज की, ऐसे ही मांग लिया होता, बोले बाप चोरी नहीं किया हूं, मैं जगन्नाथ जी स्वीकार कर लिया, ये माने गए। बोले सत्य बोलो तो छोड़ दूंगा, बोले सत्य ही बोल रहा हूं, कभी कभी झूठ बोलने में छूट जाता, सत्य बोलने में फंस जाता, ऐसा कर लियो गया। बोले सत्य बोल रहा जगन्नाथ ने लिया, बोले ऐसे नहीं मानेगा, सिपाही इसको जेल में डालो, बढ़िया से ट्रीटमेंट करो इसको, इतना मार मारो कि स्वीकार करे सत्य क्या है, वो तो बेचारा सत्य ही बोल रहा है, और जेल में डाल दिया, खूब मार मार पिटाई हो रही है, सत्य बोलो, एक ही बोल रहा है कि मैंने जगन्नाथ जी को भेज दिया है, उसने ले लिया, कौन मान, रात भर 12-1 बजे तक मारते मारते थक गए सिपाही, बोले थोड़ा आराम करते मॉर्निंग में फिर मंगला के पास चलो सेवा, सो गए। लेकिन ये रात में रोते रोते कहा है जगन्नाथ जी आपको मैंने गद्दा दिया और आपने मुझे क्या दिया, आप तो गीता में कहते हो कि ये जो मुझे बचता है ऐसे में मैं क्या ये दिया आपको, आप करुणा के सिंधु है दया बिंदु है और मुझ पतित पर इतना दंड क्यों, मेरा परिवार नाथ हो जाए, कृपा करके हमारी रक्षा करें। बस प्रेम से जगन्नाथ को पुकारा और जगन्नाथ पुरी से जगन्नाथ जी साक्षात उसी दिल्ली में उसी कारागृह में जेल में जेल में जाऊंगा, मैंने मोटी बात नहीं न्याय जन्म न्याय सीधा न्याय रखे, बोले ये तो मेरा बर्थ प्लेस है, कोई टेंशन नहीं, वही प्रकट हो गए। और ये तो देख रहा जगन्नाथ को देखते ही प्रसन्न हो गया, जो दर्द था शरीर में वो राहत हो गया। और भगवान ने क्या किया, बोले हे परमेश्वरी क्षमा कर देना मुझे, मेरी सेवा के कारण तुम्हें दंड मिला। और भगवान ने अपना हस्तकमल जो राइट हैंड का लक्ष्मी जी उसने उसके सर पर रखा, ऐसे ही जैसे ही सर पर रखा सारा घाव सारा पीड़ा गायब, और एक फायदा ये हुआ कि वो सुंदर हो गया, कुरूपता चली गई, और जो वो था ना कुबड़ वो भी सीधा सेकंड केस ऑफ कुब्जा दूसरा एक कुब्जा वाला केस थे। जो हम लोग सुनते हैं गोकुल मथुरा में भगवान सर्जरी कर दिए थे बिना काटे बैठे कुछ भी थे, मुकुंद स्पर्शना सत्यम प्रमदा उत्तमा, सुखदेव जी ने लिखा कि मुकुंद ने केवल स्पर्श किया तो लक्ष्मी से भी सुंदर बन गई कुब्जा, क्यों नहीं भगवान क्या नहीं कर सकते। तो यहां पर भी ये कुबड़ चला गया एकदम सुंदर हो गया और कहा धन्यवाद प्रभु आपने हमारी रक्षा की, अब मुझे विश्वास है, बोले तो इधर आराम कर मैं आता हूं। और जो 12:30 बजे वो राजा सोया था उसके सर पर चढ़े जगन्नाथ और धड़ाधड़ी पीटा है उसको चालू किए, वो भी देखा ये कौन है इतना बड़ा बड़ा आंख इतना है, ये कौन कौन से भूत कहा किस लोक से आया किस लोक से, वो भी देखा रखा, वो कहते कि मैं इस ब्रह्मांड का स्वामी जगन्नाथ हूं और मेरा भगत सही कह रहा था, उसने मुझे गद्दा भेजा, मैं तेरे को बादशाह बनाया था तो अपने बाप का समझने लगा, सब सब मेरा है, क्या आह्वान में आ गया, वो तू तो कभी मेरे को भोग लगाता नहीं कुछ देता नहीं धागा भी, वो भगत दिया तेरे को सहन नहीं, अब तेरा चर्बी उतारता हूं धड़ा धड़ी फिर से मारो जगन्नाथ। अच्छा है बलदेव को नहीं लाए थे, नहीं तो ये हम लोग चला जाता, डाउ डाउ रेस कर रहे थे केवल जगन्नाथ आए नहीं तो कभी कभी दोनों भाई पधारते हैं कृपा करने, लेकिन केवल जगन्नाथ। और इतना पिटाई करके बोला अब भी क्या अभी उसको छोड़ और उसका स्वागत सत्कार कर, उसका यात्रा होना चाहिए पूरे नगर में, तू हर रोज घूमता है ना सिंहासन पर उसको घुमाता है, और नहीं किया तो सुबह तक तू और तेरा पूरा परिवार का नाम रेशन कार्ड से काट दूंगा, जिंदा नहीं बचोगे। वो तो बेचारा बोले तुम उठो तब मैं जाऊं ना लेक्चर कहां सुनता है अभी। और जैसे जगन्नाथ अंदर जाने गया और उधर जाके देखा तो वो क्या कर रहा था, वो तो अभी उसका सारा बीमारी दूर दर्द दर, सब चला गया था, वो तो हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे माला कर रहा था। ये सीखना चाहिए हम लोग को, भगवान सारे दुख बताए तो माला बंद कर देता है, तकलीफ है थोड़ी बचो, इनको तकलीफ दूर हो गया तो क्या कर रहा था, भजन कर रहा था। और जैसे इसने खोला ये चरणों में गिर रहा है, ये समझ गया कि ट्रीटमेंट हो गया होगा इनका बोले आज से आप हमारे दर्जी नहीं आप हमारे गुरु हैं और आपको कोई काम करना नहीं, और मैं समझ गया कि आपका गद्दा, बोले पहले ही मैं कहा था मैं झूठ नहीं बोला, बोला आप इतने सत्यवादी हो आज मुझे पता चला।
देखिए जगन्नाथ जी जिस पर कृपा करते थे ना, वो राजा कहा कि इतना मार मारा मेरे को, तब वो परमेश जी कहा नहीं भैया, इस त्रिभुवन में तुम सौभाग्यशाली हो, क्योंकि जिसका दर्शन भी मोक्ष दे देता है तुझे तो उसे डायरेक्ट प्रसाद मिला। बोले इस टाइप का प्रसाद नहीं चाहिए। बोले नहीं, इसका हाथ जिसको छू जाए उसके यम दरवाजे बंद हो जाते हैं, यम के द्वार, इसलिए तू भाग्यशाली है। वो तूने तू मेरे साथ ऐसा किया इसलिए तुझे अनुभव हुआ, लेकिन अब कोई कृपा, अब कोई इस तरह का बात नहीं होता। और इस तरह वो गुरु माना, उसका सागर सत्कार किया, सारा काम छुड़वा दिया। भगवान जगन्नाथ की लीलाएं आज भी होती रही। कोई ये जो मैं कथा कह रहा हूँ ये कोई हजार साल पूरा क्यों, 400-500 साल हो गए, ये कलयुग की लीला है, अभी की लीला सत्य घटना कि जगन्नाथ प्रकट है। तो पांडी विजय उत्सव इस तरह होता है, चैतन्य महाप्रभु देखने के लिए पहले ही पहुंच गए थे वहां कि जगन्नाथ कैसे होते हैं। और कविराज महानुभाव ने लिखा, विश्वंभर जगन्नाथ चालाई ते शक्ति का, अपन इच्छाएं चले करी दे विहार। कौन है जो जगन्नाथ को उठा सकता है या चला सकता है? वो तो उनकी इच्छा है तो उठते हैं, उनकी इच्छा है तो चलते हैं। क्योंकि पंडित जैसे ही रखते थे फिर थोड़ा रेस करके बोलते चलो उठा, हाँ हाँ करे, लेकिन उठते फिर उसको गाली देते, अरे कालिया हम लोग को पसीना निकल रहा है, रथ पे जाना नहीं है क्या? ये केवल जगन्नाथ में पंडे लोग हैं, गालियां भी देते। बहुत गाली सुनने के बाद फिर ट्राई करते जगन्नाथ, थोड़ा उठते थोड़ा उठते फिर दो कदम में फिर इस तरह, और फिर नाचते झुमाते हैं लोग, जब उठाते हैं ना तो जगन्नाथ को, क्योंकि ये राजा है ना, झुमता आती है भाई, डांस करते हुए जाता है और रथ पर आरूढ़ हो जाए। लेकिन इस दृश्य को देखकर महाप्रभु मणिमा मणिमा बोले उच्च ध्वनि। चैतन्य महाप्रभु दोनों हाथ उठाकर क्या बोल रहे थे? मणिमान बोलिए आपकी, मणिमान मणिमान मणिमान। और इतना आवाज मृदंग ढोल करताल बज रहा है कि सबको नहीं सुनाई देता था, लेकिन आसपास वाले लोग सुन रहे। प्रभुपाद जी कहते हैं मणिमा कहते हैं उड़िया भाषा में जो महान हो, ग्रेट पर्सनालिटी, जो सर्वेश्वर हो। तो भगवान की ये मधुर सर्वेश्वर लीला में चैतन्य महाप्रभु मणिमा मणिमा कह रहे हैं। और रथारूढ़ इस तरह रथ पर आरूढ़ पंडा लोगों ने कर दिया। तब क्या हुआ? तबे प्रताप रुद्राय करी लसे वर सुवर्ण मार्जने लिया करे पथ समार्जन, चंदन जलित करे पथ सिंचन। उत्तम है यार, राजा एकदम उत्तम है, करे नीच सेवा, एकदम नीच सेवा कर रहे हैं, समार्जन का। अपने को दास मानते थे ना पूरी के राजा जगन्नाथ जी के आदे जड़ लगा। चेतन महाप्रभु ने वो भी देखा, कविराज जी ने लिखा उत्तम हैया करे राजा ये तुच्छ सेवन, अतएव जगन्नाथेर कृपा रखा। अपना अभिमान पद सब छोड़कर भगवान को अपना दास मान, भगवान का दास अपने को मानते हुए एकदम निम्न सेवा कर रहा। जगन्नाथ जी बड़े प्रसन्न हुए। जगन्नाथ कौन? वो स्वयं चैतन्य, जय गौर से कृष्णा। नीला चले शंख चक्र गदा पद्म धारा, जो नीला चल में शंख चक्र गदा, नदिया नगरे दंड कमंडल करा, वही नदिया नगर में दंड कमंडल लिए हुए डोरा है ना। तो जगन्नाथ कृपा भाजन मतलब चैतन्य कृपा भाजन हो गए। और इस तरह रथ पर भगवान चढ़े और गच्छन। अब क्या हुआ? रथ यात्रा चालू हुई। जगन्नाथ स्वामी की, बलदेव सुभद्रा जी की, तीनों को अपने रथ पर चढ़ाया गया और रथ चालू हुआ। ये भी मूड है भगवान को वृंदावन ले जाना है ना, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा में क्या करते, वही राधा रानी कुरुक्षेत्र में जब मिलन हुआ द्वारकाधीश रानियों के साथ गए, वहां से गोपियानंद बाबा सब आए कुरुक्षेत्र में, भागवत में कथा है। और वहां कृष्ण को देखा गोपियों ने वर्षों के बाद, लेकिन रूप अलग था, मोर मुकुट की जगह सुवर्ण मुकुट, वनमाला की जगह हीरे मोती की माला, बंसी की जगह शौर्य क्षत्रिय आवेश। बोला उतारो ये सब, कुरुक्षेत्र तो है, आप भी है हम भी है, लेकिन वृंदावन, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जब भी भगवान जगन्नाथ को देखते राधा भाव में ब्रजेंद्र नंदन को देखते। चैतन्य चरितामृत वर्णन है, जबे देखे जगन्नाथ श्री राम सुभद्रा साथ, तबे जानी माइलाम कुरुक्षेत्र।
चैतन्य महाप्रभु जब भी जगन्नाथ को देखते तो क्या देखते कि मैं राधा हूं और ये कृष्ण है और कहां मिलन है, कुरुक्षेत्र में खड़ा हूं उसको, क्योंकि वर्षों के बाद वही मिलन हुआ था कुरुक्षेत्र में। और जब जगन्नाथ को देखते क्या अनुभव करते, जैसे राधा रानी कृष्ण को कुरुक्षेत्र में देखी तो क्या अनुभव की,
सफल है जीवन देखी मुँह पद्म लोचन।
आज मेरा जीवन सफल हो गया कि मैं अपने नैनों से इस कमल नयन को देख रही हूँ।
सफल है जीवन देखी मुँह पद्म लोचन जुड़ाई लतनु मन प्राण।
आज मेरा प्राण मन इतना आनंद उत्साह में है कि मेरे वश में नहीं, लेकिन फिर भी है कृष्ण एक करुणा है। क्या बोले मूड एक सब है, आप है, मैं हूं, प्रेम है, आनंद है, जीवन सफल, फिर भी क्यों तकलीफ क्या है।
कहां मोरा वृंदावन कहां जमुना पुलिन कहां मोरा मदन मोहन।
वो यमुना नहीं है, वो वृंदावन नहीं है, इसीलिए बस हो गया, अब छोड़ेंगे नहीं आपको। ए ललिता पिसा का उठाओ इसको, उतारो इसका सीधा पकड़ी नीचे डालो मोर मुकुटा पर, उतारिए माला, वैजयंती पहनिए, विराजे रथ पर, और सब गोपी खींचकर अब द्वारका जाने देगी, कहां ले जाएगी वृंदावन। ये है रथ यात्रा का मूड। रथ यात्रा मतलब केवल पेप्सी कोका कोला पियो तो भी पहनो पहनाओ, बाहरी रूप में तो है ही है जैसे रथ यात्रा में हमारा होता है, आंतरिक मूड क्या है। रथ यात्रा भगवान को अपने हृदय वृंदावन में जगन्नाथ जी को लाना कृपा पढ़ा। चैतन्य महाप्रभु ने प्रभुपाद जी ने ये सौभाग्य पूरे विश्व को दिया, इतना दुर्लभ ब्रज प्रेम का महोत्सव। राधा भाव विदा विदा विदुरा इधर इधर कृष्ण प्रेम विदा विदुरा, दोनों का मिलन राधा चैतन्य हृदय है, कृष्ण तो है ही जगन्नाथ, इनका मिलन मतलब इतना पवित्र प्राचीन और प्रेम का महोत्सव। रथारूढ़ो गच्छन चले, तब क्या हुआ मिलित साथ में मिल गए भूदेव, सब ब्राह्मण जो पंडा थे, पटले मतलब समूह में, पटले 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 मतलब समुदाय, सारे ब्राह्मण के झुंड के झुंड क्या कर रहे थे,
स्तुतिर प्रादुर्भाव,
स्तुति करने लगे अलग अलग श्लोकों में, वेदों के मंत्रों में, अपनी अपनी भाषाओं में, प्रादुर्भाव में हृदय से भाव प्रकट होने लगा शब्द के रूप में, जगन्नाथ जी के गुणों गाने लगे। लेकिन जगन्नाथ क्या कहते थे, प्रति पदम, उन ब्राह्मणों के प्रति शब्द को, पद को, श्लोक को उपाकर्ण्य ऊंचे कान से सुनते थे। आप लोग की आंख बंद होगी तो कान बंद हो जाएंगे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा भी हो गया, पता नहीं आंख का कान का क्या कनेक्शन है, आंख बंद होते कान बेचारे शटल खुला है लेकिन अंदर दुकान में कोई होता नहीं, दशा हो जाती है, इसलिए आंखों को खुलवाना पड़ता है। और आप लोग सुबह सुबह हम लोग जगह इसलिए हो स्वाभाविक है ये, फिर भी सावधान तया श्रणो, शुभदेव जी भागवत में कहते हैं ऋषि सावधान तया, सावधान मतलब गोकर्ण की तरह सुनो, कुंभकर्ण की तरह नहीं, भागवत कैसे सुनना चाहिए गोकर्ण की तरह। गोकर्ण एक पर्सनालिटी हुए ना भागवत सुन, और एक दूसरा भी हुआ रावण का छोटा भाई जो हमेशा, तो कुंभकर्ण नहीं बनना है, भागवत में क्या बनना है गोकर्ण की तरह, मतलब भाव से हृदय से प्रति शब्द को सुनते थे। बड़ा अच्छा लगता था जगन्नाथ जी को, देखो हजारों लोग स्तुति कर रहे हैं और कोई नजदीक कर रहे हैं कोई दूर कर रहे हैं, लेकिन ये जगन्नाथ जी है जो हजारों कान हजारों तो अपना रूप बता सकते हैं, हजारों व्यक्ति हजारों अलग अलग पद भाषा में हजारों प्रकार की स्तुति कर रहे हैं हजारों स्थानों में, लेकिन भगवान एक साथ सब सुन लेते हैं, इसीलिए उनको भगवान कहते हैं। कोई ये पंडा ही गा रहा है, ये पंडा वो गा रहा है, वो ये गा रहा है, कोई नजदीक में गा रहा है, कोई दूर गा रहा है, लेकिन जगन्नाथ जी सबका सुनते हैं और भाव से सुनते, उपाय करने सुनकर नहीं, कान खुले रखकर क्या कहा अच्छा और उनको अच्छा लगता है, और सुनकर क्या होता है सदैव जो भी भगवान की स्तुति प्रार्थना करता है उनके प्रति भगवान विशेष दयालु हो जाता है। दयालु तो है ही है लेकिन स लगाया गया है कि दया उसकी उमड़ जाती है, नेचुरल है। आप कोई भी व्यक्ति हो, आज संसार में भी आप देखिए कितना क्रूर व्यक्ति हो उसके चरणों में आप प्रार्थना अनुनय कुछ तो पिघलता है ना, दया उमड़ती है। तो फिर ये तो दया के सिंधु है और उनके प्रति कोई प्रेम से प्रार्थना करे तो क्यों नहीं सदैव, तो और दया उनको हो जाता कि इनका मैं कैसे उद्धार करूं। इसलिए आप जीवन में शोक से मुक्त होना चाहते हो तो श्लोक पढ़ो। ये लोग क्या कर रहे हैं ब्राह्मण सब, श्लोक पढ़ रहे हैं, पद बगा रहे हैं जगन्नाथ के, और जगन्नाथ जी सुनते और सुनते सुनते अनुमोदन भी देते, देखते रहते हैं, बड़ी बड़ी आंखें उनकी, और कभी इतना सुनने में मजा आता है तो रुक जाते, रथ रुक जाता है जगन्नाथ जी। कोई ब्राह्मण अगर अच्छा गा रहा है पर गीत गोविंद के विषय में लिखा है कि जहां भी चलता है जगन्नाथ रुक देते हैं अपना रथ। इवन चैतन्य महाप्रभु भी अपने को नहीं संभाल पाए सन्यासी होते हुए, वो कन्या गा रही थी स्त्री दौड़ गए पीछे। गीत गोविंद इतना प्रिय है भगवान को जयदेव जी का, कोई भी स्तुति भाव से प्रेम से भगवान की गाई जाए तो भगवान सुनते हैं और सुनने करने वाले के प्रति वो अति दयालु हो जाते सद। दया सिंधु बंधु, वो दया के सिंधु है, समुद्र है, और सबके बंधु सुयदम सर सबके हितेशी मित्र है। और वे क्या करे सिंधु सुतया सकल जगताना, पूरे जगत के जो बंधु है और दया के सिंधु है। तीसरी लाइन में क्या लिखा दया सिंधु बंधु सकल जगता, दया के सिंधु है और सकल जगत के बंधु। वो क्या करे सिंधु सुतया, सिंधु समुद्र को कहते सुता, तस्य पुत्री लक्ष्मी सुतया विभक्ति में है कि मतलब वो भगवान जगन्नाथ जो दया के सिंधु है सबके बंधु है वो लक्ष्मी जी के साथ मेरे नयन पथ में अपनी अलादिनी अंश स्वरूपा श्री लक्ष्मी के साथ मेरे नयन पथ में पधारे। ये श्लोक का अनुवाद है। और भी इसके अंदर दया सिंधु को समझाने के लिए और सकल जगताम बंधु को समझाने के लिए इसी रथ यात्रा के अंतर्गत भगवान की लीलाएं हुई कि रथ यात्रा में भगवान कैसे दया सिंधु और रथ यात्रा में भगवान कैसे सकल जगताम बंधु। लेकिन हमारा समय खत्म, हम नेक्स्ट क्लास में इसकी चर्चा करेंगे। जगन्नाथ अष्टकम पूरा करने का कोई मूड नहीं है हमारा लेकिन जो अंतिम क्लास सोमवार को कल होगा उसमें हम इसी श्लोक को कहेंगे और फिर तीन श्लोक बचे हैं उसका ऐसे ही 5 मिनट में अनुवाद कर देंगे आप लोगों की प्रसन्नता के लिए। लेकिन हम ये चाहते हैं कि बस भगवान जगन्नाथ की लीलाओं को उनके गुणों को गाया जाए। जहाँ तक अंत या समाप्त करने की बात है तो शेष भी नहीं कर सकते, शिव भी नहीं कर सकते तो जीव क्या चीज है। लेकिन हम लोग अपने को शुद्ध करने के लिए उनकी कृपा पाने के लिए यथामति यथा समय सेवा साधना के रूप में श्रवण कीर्तन नित्य करना है सो कर रहे हैं। तो धन्यवाद आप लोग इतना धैर्य से सुने, तो मैं समय के अंतर्गत समाप्त करूं। इसलिए ये मैं अनुवाद किया इस श्लोक का और मैं केवल आज के श्लोक में रथ यात्रा पर फोकस किया, चैतन्य चरितामृत से याद कराया लीला को, उस भाव को बताया। तो इसलिए जो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में जो कृपा है लीला उसको नहीं कह पाया लेकिन मैं सोमवार को उसको कहूँगा। धन्यवाद। कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं और इस लीला में आप भी कुछ सुने हैं पढ़े हैं तो कमेंट्स भी दे सकते हैं। यहाँ कोई ऐसा नहीं कि ऊपर बैठ गए तो महान हो गए, नहीं, हम बोलने की सेवा करते, आप सुनने की बोध यंत परस्पर जो भगवान के विषय में जानता है प्रेम भक्ति बढ़े ऐसे बात आप लोग भी कुछ बोल भी सकते हैं। और धन्यवाद मैं विशेष दूंगा इसका कमेटी को विराजमान है यहाँ से गौरव प्रभु हमारे श्री आदरणीय मित्र वो भी प्रेम करते हैं हमसे श्री रुक्मा प्रभु। मुझे अच्छा लगा 5 दिन से मैं कह रहा हूँ जगन्नाथ तो आप लोग सुन रहे हैं तो मैं भी पढ़ता हूँ उस बहाने याद आता है नहीं तो सोता रहता अगर नहीं बोलता तो। तो इन लोगों ने अवसर दिया सेवा का और इस जहाँ आप सब आते हो तो अच्छा लगता है। तो जो बात हृदय में कभी सोची भी नहीं होती और कभी बोला नहीं बहुत वर्षों पहले वो याद आ जाती है और बोल देते हैं।
तो बस इसी तरह आप लोग अनुग्रह रखिए, सेवा में लगाते रहिए। और कोई प्रश्न है तो पूछिए, जो इस श्लोक में कुछ समझ में ना आया, कोई शब्द या मुझे सबसे ज्यादा अच्छा ये लगा कि स्तुति करे तो भगवान सुनते हैं और दूसरा करने वाले के प्रति दयालु हो जाते, इसलिए हमें रोज भगवान को प्रार्थना, भगवान को अच्छा लगता है तो कोई उसकी प्रार्थना करता। ठीक है, आप लोग प्रसाद, जगन्नाथ की कृपा मतलब प्रसाद, इनसे आपको विरह नहीं कराना है। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की हृदय दोर हरि प्रेमानंदे।